नमस्कार, बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। अद्वैत का क्या मानदंड है, बड़ी काम की बात है, क्योंकि हम ज्यादातर अद्वैत की ही चर्चा करेंगे। अद्वैत के अलावा है ही क्या ज्ञान मार्ग में बताने का। तो अद्वैत का मानदंड है अपरिवर्तनीय, और कुछ नहीं है। ये मैंने इतने सारे मानदंड रखे हैं आपके सामने, उसमें से एक भी नहीं है सत्य का मानदंड। अद्वैत में, अद्वैत में एक ही मानदंड है कि जो परिवर्तनशील है वो असत्य है, वो मिथ्या है। जो अपरिवर्तनीय है, जो बदलता नहीं है कभी, वो सत्य है। उनका बहुत सरल मानदंड है, लेकिन ये सरल है इसीलिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इसमें बहुत वजन है। तो ये बात ध्यान रखिए थोड़ा सा, कि अद्वैत का अपना मानदंड है सत्य का और असत्य का। यदि आप किसी को कहने जाएं कि मेरे हिसाब से जो है जगत मिथ्या है, अगर वो आदमी भी ज्ञान मार्ग पर है तो सबसे पहले वो मानदंड पूछेगा कि भाई क्यों है, आपका आपके आपका हिसाब क्या है, पहले आप बताइए आपका मानदंड क्या है मिथ्या कहने का, किस आधार पर जगत मिथ्या है। तो आपको पहले ये बात बतानी पड़ेगी कि मेरा सत्य का मानदंड परिवर्तन है, जगत हमेशा परिवर्तनशील है, यहाँ पर एक भी वस्तु नहीं है जगत में जो कि स्थायी हो। इसीलिए मेरे मानदंड से, अद्वैत के मानदंड से, अगर आप वेदांती हैं तो जगत मिथ्या है, तब उसका कुछ उपयोग है वो कुछ कहने का, है ना। नहीं तो एक अर्थहीन बात है। जगत मिथ्या है मतलब क्या, इसका किसी के लिए कोई अर्थ नहीं निकलता जब तक आप मानदंड नहीं देते क्यों आपने कहा है मिथ्या। तो आप देखेंगे बहुत से प्रवचन होते हैं, बहुत से सत्संग होते हैं, जहाँ गुरु मतलब बिना रुके कहते जा रहा है कि भाई आपका हर अनुभव मिथ्या है, आपके सारा जगत मिथ्या है, आपके जो रिश्तेदार हैं मिथ्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो आपका आपके पास दो ही तरीके बचते हैं, या तो आप हंस के चले जाइए वहाँ से उठ के, ये क्या बकवास कर रहा है, या दूसरा उसको अंधश्रद्धा से मान लीजिए। इसके अलावा आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, आप और कुछ चुन नहीं सकते। ये आपके पास दो ही चीज़ें हैं, या तो मान लीजिए उसको आंख बंद करके अंधश्रद्धा से, या फिर उसका उल्टा, अंधश्रद्धा से उसको ठुकरा दीजिए, उस पर अविश्वास कर लीजिए। तो अंधविश्वास और अंध अविश्वास एक ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपके पास सत्य का मानदंड नहीं है। अब गुरु ने भी नहीं बताया। हो सकता है आप गुरु के पास बीच में कहीं पहुंच गए हो, जब एक महीने का प्रवचन हो चुका हो, तो हो सकता है उन्होंने मानदंड पहले बता दिए हो। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये चीज़ जो है इनको गांठ बांध के रखिए, जो ज्ञान के बारे में और जो सत्य के बारे में जो कह रहा हूं, आप आने वाली चीज़ों का आधार है। अगर मैं आगे कहूँगा कि आत्मन सत्य है बाकी मिथ्या है, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए ये कि क्यों सत्य के वर्गीकरण ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि ये मेरा मानदंड है। और आप कहेंगे क्यों भाई, यही क्यों मानदंड है आपका, परिवर्तनशीलता ही क्यों मानदंड है? तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों है, और उसके बाद भी आपकी इच्छा है आप उसको माने या नहीं माने। ये मतलब अंधश्रद्धा का विषय नहीं है, अध्यात्म में अंधश्रद्धा नहीं होती है। ये बड़ी बड़ी बात है। कुछ लोग अध्यात्म और धर्म के बारे में कुछ, मैं भी भेद करना नहीं आता, उनको लगता है कि हाँ किताब में अध्यात्मिक किताब है, अब मुझे उसको मानना ही पड़ेगा, सब लोग मानते हैं, बड़े बड़े लोग मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मानदंड बहुत कठोर है, उससे भी ज़्यादा कठोर हैं, अद्वैत से भी ज़्यादा कठोर हैं, तो आपको मानने की आवश्यकता नहीं है उसको। आपको उस पर अपने कर्म करने की या कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बोलने की भी नहीं। अब हम देखिए, अद्वैत का बहुत कठोर है मानदंड, एक ही है, एक ही मानदंड है। आप बोले नहीं मेरा अनुभव है, नहीं ये तर्क है, नहीं ये ऐसा है वैसा है, सर्वव्यापक है, गणित से हो रहा है, अद्वैत को कुछ नहीं करना है उन चीज़ों से। वो यही पूछेगा अद्वैत की, भाई बदल रहा है क्या ये? हाँ तो मिथ्या है, जाने दो। ये बहुत कठोर है मानदंड, मेरे इतने कठोर नहीं है, मेरे वो हैं जो मैंने ऊपर लिखे हैं, एकदम कठोर तरीके के अद्वैतिन है, वेदांती हैं, वो एक ही मानदंड है उनका, और कुछ नहीं है सत्य के बारे में। जो इतने नहीं हैं, जो जिनको कि अपनी रोजी रोटी भी चलानी है, या जिंदा भी रहना है, जीवन चलाना है, दूसरों से व्यवहार करना है, उनको थोड़ा ढील देनी पड़ती है अपने मानदंडों में। तो आप कहेंगे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ इतने बजे, छः बजे इस जगह पे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये तो परिवर्तनशील है चीज़ें, तो तुम आओगे या नहीं आओगे मुझे तो सत्य नहीं लगता, ऐसा मैं नहीं कह सकता क्योंकि व्यवहारिकता के हिसाब से ये बेवकूफ़ी होगी। तो क्योंकि ये जो तार्किक लगेगा लगता है, और मेरा अनुभव है कि आप हमेशा मिले मेरे से जहाँ पर भी आपने कहा, तो मेरा खुद का अनुभव है और श्रद्धा है थोड़ी बहुत, तो मैं वहाँ आ जाऊँगा आपसे मिलने। मैं ये नहीं कहूँगा कि सत्य है कि असत्य है, मैं इस पर कर्म करूँ या नहीं करूँ, लेकिन यदि आप कहते हैं कि ये मंत्र पढ़ो इससे ये सिद्धि मिलेगी, तो मैं अपने मानदंड उसमें लगाऊंगा कि भैया ठीक है आपको मिल गई होगी सिद्धि, लेकिन मेरे हिसाब से ये असत्य है। तो बदलता रहता है सत्य असत्य, मानदंड भी बदलते रहते हैं। आप देखेंगे बड़ा ये सत्य असत्य भी परिवर्तनशील है, बदलती रहती है, इसीलिए सत्य असत्य को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, कभी भी बदल जाता है। सिर्फ अद्वैत का जो मानदंड है वो नहीं बदलता। आपको बड़ा सुन के आश्चर्य होगा, आपको बड़ा रोचक लगेगा, ये बात रुचिकर लगेगी कि ऐसा ही क्यों है, परिवर्तनशीलता को ही मानदंड क्यों बनाया गया है अद्वैत में। तो उसका यही कारण है कि सत्य हमेशा बदलता रहता है, तो जो बदलता है वो सत्य नहीं है। अगर आपका अनुभव बदलता भी बदल सकता है, ये तो मिथ्या है क्योंकि ये माया है, तो आज जो चीज़ दिख रही है हो सकता कल ना दिखे, है ना। परिवर्तन को ही उन्होंने मानदंड बना डाला है, तो बहुत बुद्धिमानी का काम है। बहुत वो व्यक्ति बहुत बड़ा बुद्धिमान होगा, बहुत बड़ा गुरु होगा जिसने आखिर में ये मानदंड बनाया। ऐसा नहीं कि कोई पागल अपने मन से जो है क्योंकि स्वैच्छिक है तो चलो मैं ये बना देता हूँ, ऐसा नहीं है, उसके पीछे कारण है। अद्वैत में जो भी कहा जाता है उसके पीछे बड़ा कारण रहता है, बड़ी सोच रहती है उसमें, बड़ा विचार करके उसको सुख कहा गया है, इसीलिए वो 10-15 हज़ार साल तक चल गया, नहीं तो नहीं चलता। एक प्रश्न है कि अनुभवों का वर्गीकरण क्यों करें, जरूरी क्यों है, क्या क्यों आवश्यक है अपने अनुभव को सत्य असत्य में वर्गीकृत करना। हमें कर्म करने पड़ते हैं, हमें बोलना पड़ता है, हमें वाणी का उपयोग करना पड़ता है, अपने हाथ पैरों का उपयोग करना पड़ता है। उपयोगी है सत्य उसमें, क्योंकि यदि आप असत्य पर कुछ कर बैठे हैं तो उसका परिणाम उल्टा सीधा गलत निकल सकता है, जो आप नहीं चाहते वो निकल सकता है, अनचाहा परिणाम निकल सकता है, इसीलिए वर्गीकरण आवश्यक है। तो आप देखेंगे सत्य और असत्य का जो वर्गीकरण है वो जीवन के लिए आवश्यक है। कोई कहता है कि ये फल मत खाओ ये जहरीला फल है, तो आपके लिए जानना बहुत बेहद ज़रूरी है कि वो सही में जहरीला है या नहीं, खास तौर से जब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा वही फल बचा है। तो यहाँ उपयोगी है ये जानना सत्य, कि आपकी जान बच सकती है। यदि आपको कोई कहता है कि उस रास्ते पे मत जाओ वहाँ शेर मिलेगा या सांप मिलेगा या कोई डाकू मिलेगा चोर मिलेगा, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, जीवन का प्रश्न है आपके। तो उत्तर जीविता के लिए बहुत उपयोगी है सत्य का वर्गीकरण। ज्ञान के लिए हो या नहीं हो उसमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए जीवन के लिए आपको जानना ज़रूरी है सत्य क्या है क्या नहीं। और ये माता पिता की एक तरह की जिम्मेदारी होती है कि वो छोटे बच्चों को पहले से बता दे कि भाई तुम ऐसा करोगे तो मरोगे, ऐसा करो। तो इसीलिए हमें उनकी हर बात पे विश्वास हो जाता है क्योंकि हमारा जीवन उन्होंने सुनिश्चित किया है बचपन से। यदि उनको भी नहीं पता होता सत्य क्या है क्या क्या चीज़ जीवित रहने के लिए आवश्यक है, तो आप जीवित नहीं रहते। तो हमारी माता पिता पर और शिक्षकों पर श्रद्धा है, क्यों, उसका अच्छा कारण है, उसका सही कारण है कि उन्होंने हमारा जीवन सुनिश्चित किया। शिक्षक ने जो हमें बताया वो उसकी वजह से हमें नौकरी मिली, नौकरी की वजह से पैसे मिले, पैसे की वजह से हमें खाना मिलता है, नहीं तो उनकी बातों का कोई उपयोग नहीं होता। उन्होंने जो कूट कूट के भरा है आपके दिमाग में कि ये चीज़ सत्य है, उसका कहीं ना कहीं कुछ उपयोग है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हर बात जो उन्होंने बताई वो सत्य हो, क्योंकि आध्यात्म जो है समाज की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर उपयोगी नहीं है, वो लागू नहीं होता जो आध्यात्मिक सत्य है। वो मैं आपको कहता हूँ कि आप शरीर नहीं है, तो उसका समाज में कोई अर्थ नहीं है इस वाक्य का, आपको शरीर की तरह रहना पड़ता है समाज में। यदि आप कुछ करते हैं तो, कुछ गलत करते हैं तो आपको लोग उसका दंड देंगे। किसको दंड मिलता है? शरीर को, आपको नहीं मिलता, शरीर को मिलता है। शरीर को बंद कर दिया जाता है जेल में। आध्यात्मिक ज्ञान का समाज में कोई उपयोग नहीं है। तो कुछ लोगों की ऐसी भ्रांति है कि आध्यात्म जो है काम की चीज़ है, बेकार की चीज़ है ये अध्यात्म। आपको किसी काम नहीं आएगा आपके जीवन में। क्या काम आएगा जीवन में? सत्य, सत्य असत्य आवश्यक है जानना कि सत्य क्या है। तो कोई कहेगा कि ये टैक्स भरो नहीं तो तुमको इतना दंड मिलेगा, इतनी पेनाल्टी है। आपको जानना जरूरी है कि हाँ सच में है या नहीं है, क्योंकि आपको समाज में किसी तरह से जीवित रहना है। इन्होंने जो बना दिया है व्यवस्था, उसमें आपको किसी तरह से निकालना है आपका जीवन। तो आपको भले ही सत्य हो नहीं हो, आपको मानना पड़ता है कभी कभी। दैनिक कार्यों के लिए निर्णायक कारक होता है, यानी कि यदि आपको कुछ निर्णय लेना है कि मैं क्या करूँ आज, ये चीज़ मुझे काम करना है, तो आपके लिए बहुत आवश्यक है सत्य क्या है, सत्य क्या है जानना। और आप कैसे जानेंगे? आपके अपने मानदंडों से जानेंगे। आपने कहीं और से लिया हो, माता पिता से, शिक्षक से, समाचार पत्र से, टीवी से, इंटरनेट से, कहीं से भी लिया हो, उसका कुछ क्या कहते हैं प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आपका काम बन जाता है तो सत्य था, नहीं तो नहीं था। आपके अनुभव से आपको सत्य असत्य मिल ही जाएगा। लेकिन यदि आप पहले से जानते हैं कि असत्य है तो आपके मानदंड सही है, तो काफ़ी जो है समय बच जाता है, आपके काफ़ी मेहनत आपकी बच जाती है। तो सत्य का ये अनुभवों का वर्गीकरण जो है आवश्यक है दैनिक जीवन में, आध्यात्मिक में इतना नहीं है। हमने अगर एक ही मानक बना दिया है सत्य क्या के परिवर्तनशील, तो बहुत आसान हो जाता है फिर सत्य क्या है जानना। इसलिए अद्वैत में सत्य क्या है जानना 5 मिनट का काम है बहुत बहुत आसान है। वो क्यों है सत्य वो जानना थोड़ा मुश्किल है, तो हम वहाँ भी जाएंगे। ऐसा नहीं है मैं आपको सिर्फ इतना बता के नहीं छोड़ूंगा कि हाँ यही सत्य है भैया, कल से इसको सत्य मान लो ना, ऐसा नहीं है। सारे कारण बताए जाएंगे। तो मैं आपको अभी एक जल्दी से सत्य के कुछ परिस्थितियां बता देता हूँ, स्थितियों पर कैसे आधारित होता है सत्य, या उसके संदर्भ में क्या सत्य होता है और वो कैसे बदलता है। वो आपको कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ जो कि आम जीवन के उदाहरण नहीं है, आपको तो खुद ही मालूम होंगे आम जीवन के क्या उदाहरण होते हैं, लेकिन मैं आपको अध्यात्म से जुड़े हुए संदर्भ जो है वो उनके उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कुछ जो हमारी जागृत अवस्था है, जो चित्त की अवस्था है, पिछले उसमें थोड़ा सा मैंने बताया था चित्त के बारे में कि कई अवस्थाएं होती है चित्त की, उसमें से एक जागृत होती है। और जागृत में जब प्रमाण की स्थिति में होता है वो, तो वो ज्ञान के लिए उपयोगी है। तो जागृत अवस्था ज्ञान के लिए उपयोगी है। और जागृत अवस्था का क्या सत्य है? थोड़ा सा तकनीकी सवाल है ये कि जागृत अवस्था में आपके लिए क्या सत्य है? बहुत आसान है इसको जवाब देना, वो है सर्वसम्मत वास्तविकता, उसको सत्य माना जाता है। बाकी किसी भी अनुभव को सत्य नहीं माना जाता। अब ये सर्वसम्मत वास्तविकता किस चिड़िया का नाम है, ये क्या है? तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, अगर मेरे सामने पानी का गिलास है, मैं कहता हूँ ये पानी का गिलास है, इसमें पानी है, और आप भी कहते हैं हाँ ये पानी का गिलास है और पानी है, लेकिन दोनों को विभिन्न अनुभव हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि मत है दोनों में और सभी का यही मत है कि हाँ भाई ये पानी का गिलास है उसमें पानी है, तो सर्वसम्मत सम्मति है यहाँ पे और उसको सच माना जाएगा। यदि मैं कहूँ कि वो पानी नहीं है, वो आम का रस है, अगर मैं कहूँ, आप कहें नहीं नहीं नहीं, हो सकता है आपका अनुभव हो रहा हो कि वो आम का रस है, मुझे तो पानी ही दिख रहा है। तो जब मत नहीं होगा तो उसको सत्य नहीं माना जाएगा। भले ही मुझे कुछ भी अनुभव हो रहा हो, मैं कितना ही चीखू चिल्लाऊं कि ये अनुभव मुझे हो रहा है, आपके हिसाब से वो सत्य नहीं होगा। और मुझे भी मानना पड़ेगा कि हाँ जागृत अवस्था है और मैं अभी सपना नहीं देख रहा हूँ, तो पानी ही होगा, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये पानी है। तो इसी के पीछे हमारी वो भ्रांति छुपी है, हमारी मान्यता छुपी है कि ज़्यादा लोग कह रहे होंगे तो सच होगा। वो इसका कारण है, इसका कारण ये है सर्वसम्मत वास्तविकता। तो जागृत अवस्था का सत्य यही होता है, लोग मान रहे हैं जो सभी जगह है, सभी की अवस्था जागृत है और वो उनमें सम्मति है, सर्वसम्मति है, उसको सत्य माना जाता है। जो भौतिकतावादी हैं, जिनके लिए भौतिक जगत ही सत्य है, उनके लिए जागृत अवस्था का सत्य ही सत्य है, बाकी उनके लिए सत्य नहीं है। जो मन में हो रहा है, जो चित्त में हो रहा है, जो सपने में हो रहा है, जो आपके मरने के बाद हो रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो सब असत्य है उनके लिए। तो इसमें काफ़ी समस्या आती है, जैसे मुझे किसी कुछ दर्द हो रहा है, किसी चीज़ का दर्द हो रहा है, अब इसमें सर्वसम्मति नहीं हो सकती क्योंकि आपको अनुभव नहीं होगा उसका, तो क्या वो दर्द वास्तविक है या नहीं? मेरे लिए तो पूरी तरह वास्तविक है, मैं तो दौड़ के जाऊंगा डॉक्टर के पास कि मुझे दर्द हो रहा है। डॉक्टर को भी श्रद्धा मेरे पे रखनी पड़ेगी कि झूठ नहीं बोल रहा होगा, दर्द हो रहा है इसीलिए आया है, जबकि ये वास्तविकता नहीं है, सर्वसम्मति नहीं है इस बारे में। हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि दर्द हो रहा है, तो काफ़ी लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं इन चीज़ों का, क्योंकि मेरा अनुभव सिर्फ मेरा है, व्यक्तिनिष्ठ है, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ उसके बारे में। तो जागृत अवस्था में वो बातें सत्य नहीं मानी जाती जो आपके अनुभव से हैं, वो सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मानदंड जागृत अवस्था का है सर्वसम्मत वास्तविकता, तार्किक होनी चाहिए, और ये सारे जो है जो मैंने कहा अव्यतिक इम्पर्सनल होना चाहिए, तो उसको सत्य माना जाता है, ये जागृत अवस्था का सत्य है। करीब करीब यही जो है सत्य विज्ञान का भी सत्य है, या फिर विज्ञान में आप देखेंगे कि कोई सत्य नहीं है, चाहे वहाँ सर्वसम्मति भी हो तो भी वो कभी कहेंगे नहीं कि हाँ ये सत्य है। विज्ञान में सिर्फ अनुभव होते हैं, प्रयोग होते हैं और सिद्धांत होता है। एक वैज्ञानिक आपको यही बताएगा कि ये प्रयोग आप करेंगे तो ऐसा अनुभव आएगा और इसके पीछे ये सिद्धांत है जो इसकी व्याख्या करता है। एक वैज्ञानिक कभी नहीं कहेगा आपको कि ये बात सत्य है, क्योंकि अगले प्रयोग से वो बात असत्य सिद्ध हो सकती है। हमेशा ऐसा होता आया है, आपने देखा ही होगा विज्ञान के जो इतिहास है, कि एक कोई मान्यता है विज्ञान में जो सबने सत्य मान रखा है, वो अगले प्रयोग से वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, वो असत्य हो जाती है। तो विज्ञान का जो सत्य है वो बदलता रहता है, इसीलिए वहाँ कोई किसी बात को सत्य नहीं कहता, केवल प्रयोग और सिद्धांत। सिद्धांत को ही विज्ञान का सत्य मान लिया जाता है कभी कभी, जो कि सत्य नहीं है। जागृत अवस्था का सत्य वैज्ञानिक सत्य मान लिया जाता है कभी कभी, जो कि व्यवहारिकता के लिए उपयोगी है। यह है जागृत अवस्था का सत्य, और उसके सही मानदंड, जो उचित मानदंड है, वो वैज्ञानिक मानदंड है, क्योंकि पदार्थ से संबंधित है, भौतिक जगत से संबंधित है, तो वहाँ सबसे उचित मानदंड विज्ञान का ही है और कोई नहीं। इसके बाद मैंने आपको दर्द का उदाहरण दिया, तो वो कहलाता है मानसिक सत्य। आपके मन में आपको मालूम है कि वो सत्य है, आपका अनुभव है कि वो सत्य है। यदि आपको गुस्सा आ रहा है, आप डर रहे हैं, आपको क्रोध आ रहा है, या किसी भी तरह के भाव आपके मन में हैं, तो आप कुछ भी कर लें दूसरों को नहीं पता चलेंगे, या आपके जो हाव भाव है उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा, लेकिन शक हमेशा रहेगा कि ये सिर्फ नाटक कर रहा है या सही में इसको भाव आ रहे हैं। तो ये मानसिक सत्य है, आपका मानसिक सत्य सिर्फ आपके लिए सत्य होता है, वो एकदम स्वप्रमाणित होगा, वो आपका अनुभव होगा, वो तार्किक होगा, आप उसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, लेकिन वो आपका सत्य होगा, वो मानसिक सत्य होगा। तो ये मानसिक सत्य जो है व्यक्तिनिष्ठ होता है, इसमें सर्वसम्मति की आवश्यकता नहीं होती, आपको आपका सत्य मालूम होता है। तो उसके बाद एक और चित्त की स्थिति है, वो है स्वप्न। स्वप्न का सत्य, स्वप्न का सत्य क्या होता है? जब आप स्वप्न में होते हैं तो वहाँ पर जो भी घटना हो रही है वो आपके लिए सत्य होती है, उस पर आपको कभी शक नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि बसें उड़ रही हैं और जो विमान है वो तैर रहे हैं, और ऐसा कुछ सपना उल्टा सीधा आता है, जब तक आप सपने में हैं तब तक आपको उस पर कोई शंका नहीं आएगी, वो आपके लिए सत्य है। आप जाग जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये सब तो असत्य था, ये सब तो बनावटी था। तो आप देखिए वहाँ सत्य तो है लेकिन अस्थाई है, ये ऊपर से ये मानसिक भी है, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ अस्थाई सत्य है स्वप्न का सत्य। बड़ी विशेष अवस्था है चित्त की। आप एक कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमेशा के लिए स्वप्न में कैद हो जाए, बंद जाए, तो उसका जीवन कैसा होगा, उसका सत्य कैसा होगा। कुछ लोगों ने कहा है कि हमारा जो जागृत अवस्था है वो करीब करीब स्वप्न की अवस्था है। इस बारे में बाद में मैं आपको बताऊंगा, इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि जगत को स्वप्न क्यों कहा गया है, कुछ कारण होगा। इसीलिए मैंने अभी उसमें उदाहरण डाल दिया स्वप्न का सत्य। यदि आपको लगता है कि हाँ जगत जो है सत्य है, तो ध्यान दीजिए आपके स्वप्न में आप जब रहते हैं तो स्वप्न भी सत्य ही लगता है, तब तक लगता रहता है जब तक आपकी चित्त की अवस्था बदल नहीं जाती, तब तक सत्य लगता रहता है। उसके बाद एक बड़ा उदाहरण है जो कि आपका अनुभव नहीं होगा अभी, कि मृत्यु के बाद का सत्य। बहुत लोगों की धारणा है कि हाँ अभी जो जगत है वो तो मिथ्या है, ठीक है ऐसा किताब में लिखा है, इसने कहा है उसने कहा है, और सपने की तरह है। जब मृत्यु होगी, जब मैं जगत से जब पीछा छूटेगा मेरा, छुट्टी होगी यहाँ से, तो वो जो अनुभव होंगे वो सत्य होंगे। आपकी भी होगी धारणा ऐसी काफी लोगों की होती है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। सत्य तो स्वैच्छिक व्यक्तिनिष्ठ, किसी भी बात को सत्य मान सकते हैं। तो मरने के बाद के जो अनुभव हैं, जिसमें जगत नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, वो स्वप्न अवस्था भी नहीं है, चित्त की एक अभिन्न अवस्था होगी, तो उसमें जो अनुभव हो रहे होंगे क्या वो सत्य होंगे? उस समय के तो सत्य ही होंगे, तो उस समय तो आपके मानदंड जो कह रहे होंगे वही सत्य होगा। अद्वैत क्या कहता है इस बारे में? अद्वैत कहता है कि ये जो जगत है वो तो मिथ्या है ही, ये माया है ही। जो जब आप जगत से जब पीछा छूट जाता है, जब मृत्यु हो जाती है, आपकी मुक्ति हो जाती है, तो जो अनुभव आपको होते हैं वो भी असत्य है, वो भी मिथ्या है। यदि ये माया है तो वो महामाया है, वो बड़ी मिथ्या है, वो महामिथ्या है तो क्यों कहते हैं ऐसा? उसके पीछे कारण है, लेकिन वो मृत्यु के बाद का सत्य है। मृत्योत्तर सत्य, स्वप्न का सत्य, मृत्यु के बाद का सत्य। और जो आखिर जो मैं अनुभव दे आपको उदाहरण दूंगा वो है आध्यात्मिक अनुभव का सत्य। बहुत से लोगों की ये मान्यता है, जो कि लोग आध्यात्मिक भी कहलाते हैं, मतलब अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं, और कभी कभी बड़े बड़े गुरु भी होते हैं, पंडित भी होते हैं, वो भी कहेंगे कि जो आध्यात्मिक अनुभव है, आध्यात्मिक जो अनुभव है वो ही सत्य है, बाकी हर चीज़ असत्य है, बाकी हर चीज़ मिथ्या है। तो यदि आपको अनुभव होता है कि मैं आत्मन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, क्योंकि आध्यात्म जो है स्वयं से जुड़ी हुई विषय है, स्वयं से जुड़ा हुआ एक विषय है, तो स्वयं का अध्ययन आध्यात्म है। यदि आपको ऐसे अनुभव होते हैं, जो कि बहुत लोगों का होते हैं अनुभव, कि निर्विकल्प समाधि, इसमें आपको सत्य दिखेगा, या ऐसी समाधि मुक्ति मोक्ष के बाद आपको सत्य, मुझे मोक्ष का अनुभव हुआ है, या मैं जीवन मुक्त हूँ, तो मुझे अब हर चीज सत्य सत्य का अनुभव हो गया, तो उसमें भी थोड़ी समस्या है, क्योंकि जो आध्यात्मिक अनुभव का सत्य है वो चित्त वृत्ति है, चित्त की वृत्ति है, वो भी सत्य नहीं है। जब तक चित्त की वृत्ति है तब तक कुछ सत्य नहीं होता। जब चित्त की वृत्ति बंद हो जाती है तो क्या होता है, आपको जो बचता है वो अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि वो फिर बदलने वाली चीज नहीं बचती। जब तक चित्त है तब तक बदलाव का अनुभव है। अनुभव की परिभाषा क्या है? जो आता है और जाता है ना। आपने कोई ऐसा अनुभव देखा है जो कि हमेशा रहता हो? कठिन है। अनुभव की परिभाषा यही है कि वो अनित्य है। यदि आप कहें मुझे आध्यात्मिक अनुभव हुआ है कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, यदि वो आपका अनुभव है तो वो अपने आप परिवर्तनशील हो गया, क्योंकि पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं होगा, तो वो भी एक तरह का परिवर्तनीय अनुभव है। तो अद्वैत के मानदंड के हिसाब से वो भी असत्य है। तो कोई कितना भी कहे कि मैं जीवन मुक्त हूँ, मुझे ऐसा आध्यात्मिक अनुभव हुआ, वैसा आध्यात्मिक अनुभव हुआ, वही सत्य है, तो आपको मानना नहीं है, क्योंकि अनुभव है, अनुभव सत्य नहीं होता। तो जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं होता। तो ये निर्विकल्प समाधि आती जाती रहती है, तो वो सत्य नहीं है, वहाँ पे आपको किसी सत्य का अनुभव नहीं हो रहा है। तो यदि आपका अद्वैत का मानदंड है जो कि परिवर्तनशीलता है, तो आप कभी गलत नहीं होंगे, आप कभी किसी गड्ढे में नहीं गिरेंगे जैसे कि लोग गिरते रहते हैं। मैंने आपको इसीलिए दिया है ये सारे इसीलिए उदाहरण दिए हैं। कुछ लोगों के लिए जागृत अवस्था का सत्य ही परम सत्य है, उनके हिसाब से कुछ भी सत्य नहीं है, तो वो तो बहुत बड़े गड्ढे में, वो तो खाई में है। कुछ लोगों के हिसाब से विज्ञान का सत्य ही, भौतिक विज्ञान का सत्य ही सत्य है, वो थोड़े से समझदार हैं, लेकिन वो भी सत्य नहीं है, वो भी मिथ्या है, वो भी माया है इस मानदंड के हिसाब से। तो आप वहाँ विज्ञान में फंसेंगे नहीं जाके कि यार मैंने अभी PhD कर लिया, अब मुझे कुछ जानना नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। इसके बाद कुछ लोग जो है और समझदार होते हैं कि नहीं, मानसिक सत्य भी मिला लो इसमें, क्योंकि हाँ मुझे दुख दर्द होता है मुझे ही पता है, लेकिन सत्य है वो मेरे लिए, सर्वसम्मति नहीं है, मुझे क्या करना है, लेकिन मेरे लिए तो सत्य है। काफ़ी समझदारी का काम है कि हाँ उसको भी सत्य मान लिया, लेकिन मानसिक सत्य भी परिवर्तित होते हैं, वो भी सत्य नहीं है आपके अद्वैत के मानदंड से। फिर कुछ लोग कहेंगे ये तो चित्त है, ये तो शरीर है, तो वो तो रहेगा नहीं, तो वो तो मिथ्या है, तो जब मृत्यु होगी, जब मुक्ति होगी जीवन से, वो अनुभव जो रहेंगे मेरे वो सत्य रहेंगे। तो वो भी बड़ा गड्ढा है, बहुत लोग उसमें फंस चुके हैं, बड़े बड़े गुरु भी उसमें फंस जाते हैं। तो जो जन्म पुनर्जन्म और जीवन संसार सब कुछ असत्य है, सब कुछ, पुनर्जन्म भी असत्य है, वो महामाया है और कुछ नहीं। तो आप उस गड्ढे से भी बच जाएंगे। कुछ लोग वही उसी को अंतिम सत्य मान लेते हैं, नहीं वो अंतिम नहीं है। उसके बाद आध्यात्मिक अनुभव का सत्य है, जिसमें कि बड़े बड़े गुरु भी फंस चुके हैं, कि गिर चुके हैं इस गड्ढे में, कि मुझे ही अनुभव हो गया, अब यही मेरा सत्य है, नहीं वो भी नहीं है। वो भी आता जाता रहता है। ये मानदंड इसीलिए रखा गया है ताकि आप किसी गड्ढे में, किसी खाई में ना गिरे। जो अपरिवर्तनीय है वह उसी को सत्य माना गया है अद्वैत में। क्या अपरिवर्तनीय है? परिवर्तन जिसमें नहीं होता, वही सत्य है, वही मैं हूँ, वही स्वयं है, वही आत्मन है। यदि आप अद्वैत के मार्ग पर चलते हैं, अद्वैत की शिक्षाओं का अनुसरण यदि आप करते हैं, तो करीब करीब गारंटी है कि आप कहीं गिरेंगे नहीं, कहीं फंसेंगे नहीं। इसीलिए इसको सीधा मार्ग कहा गया है। इसीलिए मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि मैंने कई मार्गों पर चल के देखा, कहीं ना कहीं आप गिरते हो वहाँ, कहीं ना कहीं आपकी प्रगति रुक जाती है किसी न किसी चीज़ पे, क्योंकि उन मार्गों का इतना कड़ा, इतना कठोर मानदंड नहीं है। आप किसी भी मार्ग को ले लीजिए, इस सारे जगत में इस ठोस किसी का मानदंड नहीं है। और अद्वैत बाद में कहता है कि जो भी आपको मैंने बताया है, आखिर में अद्वैत कहेगा कि वो भी सत्य नहीं है, अज्ञेय है। वास्तविकता क्या है, अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूँ, ये जाना नहीं जा सकता, अज्ञेय है। तो ये जो सत्य के संदर्भ है वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। बड़ी काम की बात है, आपको पता चलेगा इन चीज़ों से कि आम आदमी के लिए सत्य कुछ भी हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अध्यात्म के मार्ग पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आप इन में से किसी को भी एक सत्य मान बैठेंगे और आपकी प्रगति वहीं रुक जाएगी, आप वहीं रुक जाओगे, आपको पूर्ण ज्ञान कभी नहीं आएगा यदि आप रुक गए वहां पर। तो आपके जितने भी अनुभव हैं, जितने भी तर्क हैं, जितना भी आपका ज्ञान है, आप वर्गीकरण करने जाएंगे तो आखिर में वो सारा का सारा 99% जो है वो असत्य के खाने में जाने वाला है, असत्य के वर्ग में जाने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रख के चलिए। तो आपने क्या जाना आज कि सत्य एक परिभाषा है उसकी, कि वर्गीकरण है अनुभवों का, और सत्य परिवर्तनशील है, सत्य व्यक्तिनिष्ठ है, सत्य सापेक्ष है, सत्य स्वैच्छिक है, उसके मानदंड बदलते रहते हैं। मानदंड एक रखें तो भी वो चित्त की अवस्था पर निर्भर है। चित्त की अवस्था आप कोई भी रखे वो भी ज़रा कठिन है पता करना, क्योंकि बदलता रहता है सत्य आपके चित्त का, स्वप्न का और जागृत का। आपने वही मानदंड रखे हैं जो स्वप्न में, जो जागृत में रखे हो। मान लीजिए साहब कि मेरा अनुभव मेरा सत्य है, यदि आपने ये मानदंड रखा है तो स्वप्न में जो दिख रहा है वो भी सत्य होगा, है ना। जब तक आप जागेंगे नहीं, उठेंगे नहीं सुबह, तब तक आपके लिए वो सत्य ही होगा, और जैसे ही उठेंगे वो असत्य हो जाएगा। तो आप देखिए, कोई भी मानदंड आप ले लीजिए, यदि चित्त की स्थिति बदलती है वो अपने आप असत्य हो जाता है। सत्य के जो मानदंड है वो भी सापेक्ष है, वो भी रिलेटिव है। यहाँ पर कुछ भी सापेक्ष नहीं है सत्य असत्य के, जब विषय आता है। तो इसीलिए यहाँ इतना झगड़ा है इस बात पे, इसीलिए इतनी अशांति है यहाँ इस जगत में सत्य असत्य को लेके, क्योंकि ये मूल बातें लोगों के ज्ञान में नहीं है। ध्यान दीजिए इस बात पे, है इतना किसी को ज्ञान कि ये सत्य क्या है और क्यों ऐसा है? ये बहुत बड़ा गड्ढा है ये सत्य, इसमें आप एक बार गिर गए, मान लिया ये सत्य है वो सत्य है, तो कुछ नहीं हो सकता इसका। लेकिन ये सब होने के बाद भी अध्यात्म में सत्य पूरी तरह से अनुपयोगी होने के बाद भी ये जो है आपके आम जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है, ये आपको जीवित रखता है सत्य। तो एक सीमित संदर्भ में सत्य बहुत उपयोगी है, और यदि आपने सही मानदंड अपना लिए हैं, बना लिए हैं, तो आपका जीवन जो है वो अच्छे से चलता है, सुखपूर्वक चलता है। आपको आध्यात्मिक सत्य का जानने की भी आवश्यकता नहीं है, यदि आपका जीवन खुशहाल चल रहा है, उसमें आनंद है, उसमें आपका आप स्वतंत्र है, तो स्वाधीन है, तो क्या करना है आपको सत्य जान के? ऐसा कुछ होता नहीं है, सत्य असत्य कुछ होता नहीं है, सिर्फ सापेक्षित तरीके से ही सत्य असत्य होता है। तो उपयोगी है, लेकिन सीमित बातों में उपयोगी है, आपके दैनिक जीवन के लिए उपयोगी होगा, या छोटी मोटी विज्ञान में जैसे उपयोग होगा, कोई आपको आविष्कार करना होगा या कुछ, काफी उपयोगी आता है उसके लिए। आपने अगर सही मानदंड बनाए हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अध्यात्म में सत्य का कोई उपयोग नहीं है, बड़ा आश्चर्य होगा आपको जान के। तो जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, जो लोग आए हैं इसमें अध्यात्म के क्षेत्र में अभी अभी, उनके लिए मानदंड मैं बताना चाहता हूँ, वो ऊपर बताए हैं, उनको आप रख लीजिए अभी, लेकिन आपको एक दिन वो छोड़ने पड़ेंगे, आपको एक दिन समझ में आएगा कि वो किसी काम के नहीं है। और यदि आप अभी अभी शुरू कर रहे हैं तो एक मानदंड आपके बहुत काम आएगा, वो है आपका खुद का अनुभव। आध्यात्म में आपका खुद का स्वयं का अनुभव सबसे बड़ा मानदंड है, बाद में वो आपको वो भी छोड़ना पड़ेगा। मैंने बताया अनुभव जो है वो चित्तवृत्ति है, सारे अनुभव चित्त पर निर्भर हैं, किसको आप सही मानेंगे? मान लीजिए आप जागृत अवस्था में हैं और इस भौतिक शरीर में, भौतिक जगत में हैं, और अब आप शुरू कर रहे हैं अध्यात्म मार्ग पे, कहीं तो शुरू आपको करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी अवस्था है जागृत अवस्था, स्वप्न में मत कीजिए शुरू, और मरने के बाद मत कीजिए, थोड़ा कठिनाई होगी मेरे हिसाब से। जागृत अवस्था में कीजिए, वहां पे सर्वसम्मत वास्तविकता, विज्ञान और आपका अनुभव, इसको सत्य मानिए, और बाकी सुनी सुनाई बातें, बाकी किसी काम के नहीं है। आध्यात्मिक शिष्य के लिए, आध्यात्म मार्गी के लिए, चाहे आप किसी भी मार्ग पर हो, योग पर हो या भक्ति पर हो या कर्म पर हो, उस पर निर्भर नहीं है, कोई भी मार्ग हो, लेकिन यदि आपने ये मानदंड बना लिया है कि मेरा अनुभव पहला है, प्राथमिक है, तो बहुत आपका समय बचेगा, बहुत तेज आपकी तेज गति से आपकी प्रगति होगी, और आप अज्ञान के गड्ढे में, अज्ञान की खाई में गिरने से बचेंगे। तो आपका अनुभव ही आपका सत्य है, अभी शुरू करने के लिए यहीं से शुरू करना है आपको। ज्ञान और सत्य में आपको अंतर पता चल गया होगा, भिन्नता पता चल गई होगी। ज्ञान का मतलब सत्य नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। आपका अनुभव ही आपका ज्ञान है और वही आपका सत्य है। जब तक वो आपका अनुभव है तब तक वो एक ही है, आपका ज्ञान ही आपका सत्य है। लेकिन कभी भी उल्टा आपको इसका उल्टा अनुभव आ सकता है, आपका गुरु इस धारणा को कभी भी तोड़ सकता है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो अनुभव बहुत कीमती चीज है, लेकिन हर चीज नहीं है ये अध्यात्म में, इतना इस पर इतना वजन देने की भी आवश्यकता नहीं है, इसको इतना पत्थर की लकीर भी मत मानिए कि मेरा अनुभव है अब यही सत्य है। आपने कहा था उस दिन कि आपका अनुभव ही आपका सत्य है, नहीं, वो ये भी छोड़ना पड़ता है एक दिन। तो वो दिन भी आएगा, और एक दिन आपको पता चलता है कि सत्य असत्य तो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, और जो परम अज्ञान है आपको वही मुक्ति दिलाता है। तो अभी तो ये समझ में नहीं आएगा आपको क्या मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन इतना समझ में आ जाए कि सत्य का मतलब पत्थर पर लिखी हुई चीज़ नहीं है, बदलता रहता है, हर किसी का अलग अलग होता है, अपने हिसाब से लोग सत्य असत्य मान लेते हैं, सबका ज्ञान अलग अलग होता है, सब भिन्न होता है, क्योंकि वो उनके अनुभव पर होता है, किसी के लिए एक चीज़ ज्ञान होगी, किसी के लिए दूसरी होगी, उनके जो प्रमाण है, ज्ञान के जो प्रमाण है वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो एक शिक्षक कुछ और कह रहा होगा, दूसरा गुरु कुछ और कह रहा होगा, तीसरा गुरु बोलेगा ये पुस्तक में लिखा है वह इसलिए सत्य है। आपको इन बातों से सावधान रहना है, गिरना नहीं है, चक्कर में नहीं पड़ना है, इस क्या कहते हैं जाल में नहीं फंसना है आपको कि किसी ने सत्य कह दिया है, किसी ने ज्ञान कह दिया तो वो सही सही में सत्य है। वो आपको अपने मानदंड बनाने हैं और सबको बताना है कि भाई ये मेरे व्यक्तिनिष्ठ मानदंड है, इसके हिसाब से मैं जो कह रहा हूँ उसका अर्थ निकलता है उस बात का, नहीं तो अर्थहीन बात है, नहीं तो आप समय नष्ट कर रहे हैं, मेरी बात मत सुनिए। यदि आपके मानदंड दूसरे हैं तो वो संचार नहीं होगा, सत्य का ज्ञान का भी संचार नहीं होगा। ये आपको पहले ही कह देना है कि मेरे हिसाब से ये सत्य की ये परिभाषा है और अब ये मैं सत्य कहूँगा। तो वो सामने वाले की इच्छा है, मानना नहीं मानना, ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो जब आप गुरु के पास जाते हैं, सबसे पहला आपका काम यह है कि गुरु जो कह रहा है, पहले तो पूछना कि भाई गुरु जी आपका अनुभव है कि आप कहीं से पढ़ के बता रहे हैं। गुरु ने कहा मेरा अनुभव है, तो आपको पूछना है कि आपके सत्य का क्या मानदंड है, क्यों मैं आपकी बात सत्य मान लूँ। तो जब गुरु ने कह दिया एक बार कि मेरा ये मानदंड है, तो आपको वहाँ पर थोड़ी श्रद्धा काम में लानी पड़ेगी, आपको गुरु के सामने समर्पण करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन भर समर्पित रहें उस गुरु को, आपका काम हो जाता है वहाँ से तो आप निकल जाइए, फिर आपको वो मानदंड मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्ञान की शुरुआत गुरु से होती है, तो आपको गुरु के मानदंड पहले मानने पड़ते हैं। यदि आप किसी अद्वैत के गुरु के पास जाते हैं तो बहुत कठोर मानदंड होगा वहाँ, ध्यान रखिए। आप जो भी जानते हैं, जो भी समझते हैं, जो भी ज्ञान है, वो सबको वो गुरु असत्य कहने वाला है। काफ़ी लोग वहाँ से उठ के चले जाते हैं क्योंकि पागलपन है ये तो। वो क्यों होता है, क्यों वहाँ पर समर्पण की भावना क्यों नहीं है, गुरु के लिए निष्ठा या श्रद्धा क्यों नहीं है? क्योंकि उनको सत्य के बारे में ये बातें नहीं मालूम, उनको ज्ञान के बारे में ज्ञान नहीं है, सत्य के बारे में ज्ञान नहीं है, असत्य सत्य का वर्गीकरण कैसे करना है वो ज्ञान नहीं है, गुरु ने वैसा क्यों किया है उनको वो भी ज्ञान नहीं है। तो वो उठ के चले जाते हैं क्योंकि मानना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है ये बातें। तो इसीलिए अध्यात्म मार्ग पर बहुत कम लोग चल पाते हैं, और जो चलते हैं वो बेचारे अपने गड्ढे की ओर जा रहे हैं, वो अपनी खाई की ओर जा रहे हैं, उनका भविष्य कहीं गिरना है जाके। क्यों? क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं है जो मैंने आपको अभी बताया। और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आपका अनुभव है। आपने कभी विचार नहीं किया, आपने इस पर कभी प्रश्न का चिन्ह नहीं डाला, आपने उसको गहराई से नहीं देखा, बस इतना ही अंतर है। यदि आप किसी गुरु के पास जाएंगे तो ये चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है कि वो क्या मानदंड है उस व्यक्ति का, उस गुरु का। यदि पुस्तक है और आपका भी मानदंड पुस्तक है कि हाँ मैं भी पुस्तकों में लिखी हुई चीज़ों को सत्य मानता हूँ, तो वो आपके लिए सही गुरु है। यदि आपका मानदंड है अनुभव, तो वहाँ से आपको निकल जाना है, आपको बहस नहीं करनी है गुरु से कि आप पुस्तक में लिखा हुआ क्यों सत्य बोलते हैं, आपका तो अनुभव नहीं है, आपको ये झगड़ा नहीं करना है वहाँ पर जाके किसी से भी नहीं, गुरु से ही क्यों, किसी से भी नहीं। क्यों? क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ है, उनकी इच्छा है भाई। हम किसी के ऊपर अपने मानदंड नहीं थोप सकते, ये अध्यात्म है। यदि आपने अपने मानदंड दूसरों के ऊपर ज़बरदस्ती डालने का प्रयास किया तो वो धार्मिक कट्टरपंथी हो जाएंगे आप। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है, नहीं मानोगे तो मैं मार डालूंगा, इस टाइप का व्यवहार रहेगा जो कि अध्यात्म का नहीं है। अध्यात्म के जो शिष्य हैं उनका व्यवहार मीठा होता है। हाँ, तुम्हारा ये सत्य है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुश रहो। इसीलिए आप देखेंगे जो आध्यात्मिक जीव हैं वो बड़े प्रसन्न रहते हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं है क्या सत्य है क्या नहीं सत्य है, उनको कुछ नहीं करना है। तो उनके जो व्यवहारिक जीवन है उसमें भी वो प्रसन्न रहते हैं, उनका वो किसी बंधन में नहीं होते हैं, किसी बात के सत्य असत्य के बंधन में भी नहीं होते हैं। तो उनकी किसी आसक्ति नहीं होती इस पे, किसी बात पर राग नहीं होता उनका, वैरागी होते हैं, बड़े मुक्त होते हैं और सुखी होते हैं। उनको सत्य असत्य कौन क्या मानता है, कि उनको कुछ लेना देना नहीं होता। तो अब आप रहस्य जान गए होंगे क्यों, क्योंकि ये सत्य है आपके सामने, ये सत्य का यथार्थ है। हाँ, अभी आपको काफ़ी स्पष्टता आ गई होगी आपके मन में, आपके बुद्धि में, कि यदि कोई चीज़ सत्य असत्य होती है, ज्ञान अज्ञान होती है, क्यों होती है। और आप देखेंगे कि उसके पीछे कारण है, और वो सभी कारण मनगढ़ंत है, बने बनाए हैं वो, ध्यान रखिए इस बात का। जो प्रमाण है, वो 6 प्रमाण मैंने जो बताए थे, वो कहीं पत्थर पे नहीं लिखे हैं, वो किसने बनाए हैं, क्योंकि किसी को ठीक लगे वो, सही लगे, तो आपने जो उसमें से 3 या 4 निकाले कि मैं इन प्रमाण, इन बातों को प्रमाण मानूंगा ज्ञान का, वो भी आपकी इच्छा है और स्वेच्छा है। मैंने आपको 4 बताए थे कि अपरोक्ष अनुभव, अनुमान या तर्क, और पुस्तकें, शास्त्र और गुरु मेरा खुद का प्रमाण है। आप ऐसा अपने हिसाब से बना सकते हैं आपको जो बनाना है, और ध्यान रखिए थोड़ा उचित होना चाहिए, बस इतना ही है। अगर आपने अनुचित प्रमाण रख लिए तो ज्ञान के जगह अज्ञान होने की संभावना है। थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बहुत नहीं। सत्य का भी ऐसा ही, आपको मानदंड आपके बनाने पड़ेंगे क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ है। लेकिन आपने कुछ बहुत ही उल्टे सीधे मानदंड बना दिए कि मेरा तो ये मानदंड है, ये इंसान, ये व्यक्ति जिसने जो इंटरनेट पर कहा है वही सच है, तो फिर आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती यदि आपका मानदंड इतना उल्टा सीधा हो तो।
आप सुन रहे थे बोधिवार्ता तरुण प्रधान के साथ। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस श्रृंखला के अगले भाग में। नमस्कार।